الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز احباب گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ غالباً یہ ہمارا تیسرا جمعۃ المبارک ہے انہی آیات کریمہ میں اور موضوع پہلے جو جمعے پر جس کی ابتدا کی گئی وہ آپ کے ہمارے موجودہ جو حالات ہیں یا ہمارے گرد و پیش جو حالات کی تنگی ہے اس موضوع پر اور اجمالی سی گفتگو عرض کر کے آج کا جو حصہ ہے یہ بات اس پر شروع کرتا ہوں کہ ہمارے گرد و پیش کی حالات سختیاں بظاہر آسائش لیکن اس کے اندر اطمینان کا نہ ہونا بے شمار معاملات ہیں جب بھی عملی زندگی میں آتی ہے تو اس کے ساتھ بے شمار حصے جو ہیں وہ دنیا میں تکالیف کے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کریم مہربانی فرمائیں کہ باعمل ہو انسان مسلمان باعمل ہو تو ظاہری طور پر جو تکالیف ہیں اس میں بھی اسے صبر نصیب ہوتا ہے تو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے چونکہ آج ہمارے معاشرے میں ایک شکایات ہر طرف سے سنی جا سکتی ہیں کہ حالات درست نہیں ہیں مسائل زیادہ ہیں تو دوارے دنیا میں بھی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی جو انسانی عمل ہیں جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان کے جو اثرات برپا ہوتے ہیں حالات میں معمولات زندگی میں روزمرہ کی زندگی کے حصوں میں جو تغیر و تبدل پیدا ہوتے ہیں اس کی جو وجوہات میں ایک وجوہ جو انسانی کردار ہے اس حوالے سے گفتگو عرض کرتا آ رہا ہوں تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے اعمال ہیں جو خشکی اور تری میں فساد پیدا کرتے ہیں اور پھر اس حصے سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ کریم نے دعوت دی قل سیروا فی الارض کہ دنیا میں گھوم کر دیکھو اقوام سابقہ کے حالات دیکھو کہ جب انہوں نے شرک کیا تو اس کے نتائج کیسے مرتب ہوئے پھر اس سے آگے اس دیکھنے کی دعوت سے آگے اور ان کے نتائج کو دیکھ کر اپنے لیے سبق آموز حصے کا حاصل کرنے کے ساتھ پھر فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ تو اپنا رخ جو ہے وہ جو دین راست ہے جو صراط مستقیم ہے اس طرف نہ صرف کیا جائے بلکہ اس کے اوپر ایک مستقل مزاجی سے اور بندی سے عمل پیرا ہوا جائے اور یہ ایسا حصہ ہے جو دین کا عمل وقتی یا لمحاتی بات نہیں ہے یہ وہ حصہ ہے جو انسان کا امتحان تب تک ہے جب تک وہ اس دنیا میں حیات ہے یعنی ایک جہد مسلسل ہے اسے اللہ رب العالمین مہربانی فرما دیں اور توفیق عمل عطا فرما دیں تو یہ توفیق عمل انسان کو اپنی حیات سے پیارا اور مقدم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب معمولات میں کمزوریاں آتی ہیں حلال حرام یا پاک ناپاک کا لحاظ نہیں رہتا اور پسند ذاتی جو ہے اس کو انسان تقویت دیتا چلا جاتا ہے تو پھر یہ عبادات اور یہ پہلو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے صراط مستقیم کے حصے میں ہمارے لیے رہنمائی فرما دی اور جس کے ایک ایک حصے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ حصے بار لگنا شروع ہو جاتے ہیں بندہ سمجھتا ہے کہ جانے میں کیا مجاہدہ کر رہا ہوں جانے میرے لیے کتنا مشکل ہے اور پھر عبادات کے اختیار کرنے اور معمولات جو دین اسلام کے تحت ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے یہ حصہ بھی محسوس کرنے لگ پڑتا ہے کہ میں نے تو کمال کر دیا ہے جو میں نے تباہ کر دیا لیکن یہ وہ کیفیات ہیں جو اللہ رب العالمین سے انسانی معمولات پر جو دار دنیا میں حالات برپا ہوتے ہیں اس کے تحت بیان فرماتے ہوئے یہاں تک جب یہ فرمایا چونکہ میں گزشتہ دو جمعۃ المبارک بڑی تفصیلاً اس پر گزارشات پیش کر چکا ہوں तो ये जो दोहे से बयान करके आ रहा हूँ, इससे मुराद ये है कि जो अहबाब आज पहली दफ़ा इस बयान में शामिल हो रहे होंगे तो उन्हें एक तसलसल जो है वो उस बात का उनके लिए अर्ज कर दो। फिर जब इससे आगे बात बढ़ी कि दीन हक की तरफ बंदा पाबंदी कर ले, तो इससे आगे जब बात बढ़ी तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगले हिस्से में फरमाया कि यौम ला मरद लहू मिनल्लाह यौम इज़ यसद्दऊन, कि अल्लाह जल्ला शानहु की जो बात या हुक्म है वो उसके तहत ही चीजें चलेंगी, और जब रोजे माशर कायम होगा, जब फुर्सत खत्म हो जाएगी, तो फिर फरमाया उस दिन सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। यानी जिस तरह के आमाल होंगे उस तरह का उस जो हिस्सा है आबादी का या जो लोगों की जमात है वो उसमें दाखिल कर दिए जाएंगे। तो ये जो आया करीमा मैंने आज तिलावत करने की सआदत हासिल की है खुतबा जुमा में, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना मन कफर फअलैहि कुफ्र, जो शख्स कुफर कर रहा है तो उसका कुफर उसी पर पड़ेगा। वमन आमिल सालेहन, और जिसने अमले साले किया उसका हिस्सा उसी की तरफ है। फले अनफुसिम यमहदून, सो ये लोग अपने लिए सामान कर रहे हैं। यानी जो हिस्से दुनिया में अमल के बंदा इख्तियार करता है, दीन इस्लाम के तहत आता है या पसंद जाती में दीन इस्लाम से तजावज की तरफ चला जाता है, दोनों हिस्सों का जो अंजाम है वो अपने उसी की जात पर जाएगा। चूंकि बेशुमार दफा कुरान करीम बयान फरमा चुका है कि यही दुनिया नहीं है, ये आलम फानी है, ये हयात फानी है, यहाँ जो नफ्स है उसे मौत है, कुल्लु नफ्स जायकतुल मौत, यहाँ हर जीरू ने हर हयात ने मौत का जायका चखना है, फिर हयात बरज़खिया है और कब तक है वो काम कितना ये अल्लाह करीम बेहतर जानते हैं। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो हर एक ने मैदान हशर में हाजिर होना है, और जब वहां तक बात चली जाएगी तो फिर दोबारा फुर्सत नहीं है किसी के पास कि वो वापस आकर अमले साले इख्तियार कर ले। ये मौका है जिस मौके में मैं और आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और कुरान करीम में अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं कि उस रोज ये कहेंगे कि हम कितने दिन रहे, 8 दिन रहे, 10 दिन रहे, 1 दिन रहे, आधा दिन रहे, कितने दिन रहे। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि काश तुम्हें एहसास हो कितना कम ठहरे हो तुम वहां। अब ये कम ठहरना जो है इस पर अब्दुल आबाद हयात जो है उसका इन्हिसार है। तो जब वहां ये हिस्से अलग कर दिए जाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में जो मुशाबत इख्तियार जिस कौम की करेगा, मन तशब्बा, जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा, रोजे माशर उसी कौम के साथ उसे उठाया जाएगा। तो जब ये हिस्से इख्तियार बंदा करता है आमाल के, तो और जो मुशाबत इख्तियार करता है तो मुशाबत ऐसे नहीं कोई इख्तियार करता कि वो किसी को दिखाने के लिए मुशाबत इख्तियार कर रहा है, उसके आमाल और उसकी सोच उस कौम के साथ ढलना शुरू हो जाती है, उसके आमाल उससे उस तरफ ढाल देते हैं कि फिर वो उनकी मुशाबत इख्तियार करता है। अब जब वो उनकी मुशाबत इख्तियार करता है तो वो न सिर्फ उनका जैसा नजर आना चाहता है, वो उन जैसा होना चाहता है, उन जैसे अंदाज से गुफ्तगू करना चाहता है, उन जैसी पसंदो नापसंद का इजहार करता है, अपने मामूलात जिंदगी में वो अंदाज वो जो इख्तियार करता है वो देखा जा सकता है। तो जब यहां कोई कुफार जैसी हरकत करता है, कोई गैर मुस्लिम जो मखलूक है उन जैसे अपने रवैये और अपनी अकदार को और अपने लिबास को अपने अंदाज गुफ्तार को ढाल रहा है, तो बेशक उसके अपना अंदर जो है वो उसे उस तरफ माल कर रहा है, तो उस अपने अंदर के मायल होने का सबब अगर हम ढूंढें तो समझ आ जाएगी कि हमारे जो रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात हैं वो क्या। जब हम दीन इस्लाम के अहकामात पर पाबंदी नहीं करेंगे, सही और गलत की पहचान नहीं करेंगे, और इबादात की फर्जियत को हमारे यहां वो दर्जा हासिल नहीं होगा कि वो मुकद्दम हो अपनी जाती मर्जी से या अपने जाती ख्याल से वो मुकद्दम हो, तो फिर नताज उसी तरफ के होंगे ना जिस तरफ की चाहते होंगे, जिस तरफ की राह होगी, मंजिल तो वही मुयस्सर आएगी, वह उसी मंजिल को मुसाफिर पहुंचेगा, वह मंजिल होगा जिस राह को उसने लिया है। तो जब बंदा वो जिंदगी इख्तियार करेगा कि जो अल्लाह जल्ला शानहु के हाँ नापसंदीदा है, तो वो फिर उसी ग्रोह में जाकर उठेगा जो अल्लाह जल्ला शानहु के हाँ नापसंदीदा ग्रोह है, चूंकि अहमाल के सदके वो नापसंदीदा है। अल्लाह करीम ने बशर को तो पैदा अपनी इबादत के लिए फरमाया और इस तखलीक को एक तखलीक का नमूना बयान फरमाया, अम्बिया और रसूल मबूस फरमाए, कलाम जाती से नवाजा, ऐसी और कोई मखलूक पैदा नहीं फरमाई जिसे अल्लाह करीम ने अपनी नियाबत का जो है फरमान जारी फरमाया। अब जब इसे इख्तियार दिया गया और ये इख्तियार को बरूए कार लाते हुए खुद तजावज की तरफ जा रहा है, तो ये जुल्म और ज्यादती खुद अपने ऊपर कर रहा है। और बड़ा थोड़ा सा वक्त है इस हयात का। हम अपने मामूलात में भी देखें, आप यकीन माने समझ नहीं आती कि एक हफ्ता जो गुजरा है, आज आपसे मुखातिब हूं तो मुझे नहीं समझ आती कि जब अगले हफ्ते में अल्लाह ने जिंदगी दी और तौफीक नसीब हुई कि जुम्मतुल मुबारक को आपसे मुखातिब हूं, तो इस पूरे हफ्ते भर के दरमियान जो वक्त है पता नहीं चलता, इतना तेजी से वक्त गुजर रहा है। और इस तेजी से गुजरते वक्त और इस आर्जी और फानी जहान की हयात को जब हम मुकद्दम कर लेते हैं और उखरवी हयात जो अब्दल आबाद है उसका लिहाज नहीं रखते, तो फिर बेशक हमने जुल्म अपने आप पर खुद किया है। और इस जुल्म की सजा फिर जब भुगतेंगे तो फिर तड़प होगी कि काश कोई लम्हा मिल जाए कि मैं वापस जाऊं, इत्तबा में जिंदगी बसर करूं, उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्द होने का शरफ नसीब हुआ लेकिन मैंने जिंदगी बेअमली में गंवा दी। तो ये वो चीजें हैं जो कुफार के हवाले से तो बेशुमार मिलती हैं, लेकिन जब कोई बेअमली का हिस्सा वहां सामने आएगा तो ये हो नहीं सकता कि ये तकलीफ वहां महसूस न हो कि मैंने जुल्म किया अपने साथ, मैंने जो अमल कर सकता था, जो हुक्म की तामील हो सकती थी मैंने नहीं की और अपने आप के साथ ज्यादती की। तो हर बेअमली के बदले में ये ऐसा सजा तो है, ये एहसास भी मैं समझता हूँ कि हर एक को वहां जरूर पैदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे कुरान और हदीस में आते हैं उसी की रोशनी में ये बात समझ आती है। तो जब ये बात आ गई कि उसी पर पड़ेगा, तो यहां इस बात को भी ये ख्याल करें कि अगर किसी ने कुफर किया तो उसका बबाल भी उसी पर है, और किसी ने अमले सहाले किए तो उसका इनाम भी उसी के लिए। तो यहां ये बात भी बड़े वाजे समझ आती है कि हम समझते हैं कि जो उलमा हैं दीन का समझना सीखना इनके जिम्मे है, और जहां हमारी जिंदगी में जरूरत पेश आएगी हम इनसे इस्तफादा हासिल कर लेंगे, मामूलात जाती हों इज्तमाई हों कोई हिस्सा आएगा तो जहां जरूरत पेश आएगी तो हम उलमा को बुला लेंगे। एक बात असूली जो है वो ये है कि अल्लाह करीम हम सब के हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के हैं, तो फिर दीन इस्लाम मौलाना के जिम्मे कैसे किया जा सकता है। अल्लाह करीम हम सब को मुखातब फरमा रहे हैं, हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फर्द हैं, तो जो इरशादात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो किसी एक हिस्से के जिम्मे करके हम कैसे फारग हो जाएंगे अपने इस जिम्मेदारी से। जब हम इसे समझेंगे नहीं, इसे सीखेंगे नहीं, तो अमल कैसे कर सकेंगे। बेशक आलिम होना, फाजिल होना, मुफ्ती होना ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह करीम दीन के इल्म में ये हिस्से अता फरमाए और इस अता का दीन अता फरमाए, लेकिन जुज़ियात की बहस तो हर आम आदमी ने नहीं करनी होती, लेकिन उसके लिए जितना उसने अमल करना है उतना दीन का जानना उसके जिम्मे है। जब तक वो उस अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा, अपने मामूलात में सही और गलत की पहचान नहीं रख सकेगा। अब हम अपने मामूलात जिंदगी में बहुत बड़ी बात हो तो ख्याल करते हैं जी हलाल हराम की बात कर ले, कभी सोचा कि हलाल तय्यबा, कुरान करीम हलाल के साथ तय्यब फरमाता है। अब जब आपने रिज्क हलाल लिया और पाकी और पलीती का ख्याल नहीं किया, तो जो वो रिज्क खाएगा उस रिज्क के खाने से जो असरात मुरतब होंगे, ये कैसे हो सकता है कि अमले साले हो? वो एक बंदी को जन्म देंगे, एक सोच को बुराई और कमजोरी की तरफ ढालना शुरू कर देंगे। तो जब हलाल भी होगा और तय्यब भी होगा और उसके नाम से इब्तदा होगी और उसी की शुक्राने पर जो है वो इंतहा होगी, तो फिर उसके नताइज भी तो ऐसे होंगे जो इंदल्ला पसंदीदा होंगे, बंदे के अंदर वो ख्वाहिशात जो अच्छाई की हैं वो बढ़ेंगी, बुराई और कमजोरी को रोकने की जो ताकत है वो नसीब होना शुरू हो जाएगी। तो जब इन हिस्सों को और इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो इन पर जो भी हिस्सा मुरतब होगा नताइज के तौर पर वो भी तो उसी ज़ात पर आएगा ना जिसने ख्याल नहीं रखा। तो यहां बेशक ये बात बड़ी वाज़े बयान है कि जिसने कुफ्र किया या जिसने अमले साले की, दोनों का हिस्सा उन्हीं को मिलेगा। तो ये बात भी बड़ी वाज़े समझ आ जाती है कि आज हम अपने जिंदगी में दीन इस्लाम की जिम्मेदारी किसी और को देकर फारग नहीं हो सकते। इसी की तफसीर और माने बईद में जाएंगे तो ये बात भी बड़ा वाज़े हो जाती है कि दीन इस्लाम का समझना, सीखना और अमल करना और इस एहसास का आखिरी टूटती सांसों और आखिरी जो हिस्से इंसानी होश के उस तक सलामत रहना ये जरूरी है। और अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए कि ये हिस्सा नसीब हो। फल अनफोसिम यह मदून, तो ये लोग अपने लिए सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ दीन पर अमल पैरा होना भी है ये अल्लाह की ज़ात पर एहसान है, इसका बदला हमें नसीब होगा। और इसके बदले में फिर आगे अल्लाह जल्ला शानहु ने इरशाद फरमाया लियज़ियल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति मिन फज़लिही, ताकि वो अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे अपने फजल से सिला अता फरमाए। यहाँ बड़ा वाज़े बयान फरमाया गया है कि जिन्हें अमले साले नसीब होगा उन पर अल्लाह करीम का एहसान होगा कि उस अमले साले के सदक़े में अल्लाह करीम उन्हें अपना अपने फजल से सिला अता फरमाएंगे, यानी उन्हें सिला तो नसीब होगा लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जिस दर्जे की अल्लाह जल्ला शानू के हजूर इबादत मकसूद है या जो कुछ उसने हमें अता फरमा दिया है उसका बदला इबादत में हम अदा कर सकें ये मुमकिन नहीं है। रोज़े माशर को जो बख्शिश भी है ये अल्लाह करीम की रहमत से है। कोई ये नहीं समझ सकता कि मैं सारी हयात उसकी इबादत करता रहूं तो मैं शुक्राने की कैफियत से आगे निकल जाऊं। हालांकि ये चीज़ हमारे अंदर आती है, हम बातों बातों में ये इससे बयान करते हैं कि मैंने इतनी इबादत किए हैं, हम अपने नवाफल गिनते हैं, तस्बीहात गिनते हैं, कुरान करीम की तलावत गिनते हैं, लोगों के साथ जो हमारे बेहतर आमाल हैं उन्हें हम गिनते रहते हैं। इस शुमार की ज़रूरत नहीं है। जिस ज़ात के लिए अमले साले इख्तियार किया जा रहा है वो अल्लाह करीम की ज़ात खूब जानती है और सारी हयात नसीब हो कि उसके हजूर सजदे में कट जाए तो भी शुक्राना अदा नहीं हो सकता। इसलिए कि जो कुछ है वो तो है, जिस वजूद को बरूए कार लाकर शुक्राने में सजदा रेज हो और जिस जबान से सुभाना रब्बी अल आला कह रहे हो, जिस दिमाग में इस तालीम को याद करके अदायगी तक पहुंचा रहे हो, जिस कलब की कैफियत से तुम ईमान की बुलंदियों को जा रहे हो, ये सारा भी तो उसी का अता किया हुआ। फिर इस सारे वजूद के सजदा रेज होने तक जो ताकत एक एक वजूद के सेल में है, जो खुराक तूने खाई, कोई हिस्सा ऐसा है जो हम कह सकें कि ये अपना हमारा बनाया हुआ? सारा कुछ जब उसी का है तो उसी जात के शुक्राने में भी जब वजूद की ताकत को बुरुकार लाते हैं तो ये ताकत भी तो उसी अल्लाह जल्ला शानू की दी हुई है। तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई ये कह ले कि रोजे माशर मैं अपनी हिम्मत पर बख्शिश को पालूंगा, ये मुमकिन नहीं। इसलिए कि उस कादरे मुतलक ने इतना कुछ अता कर दिया है और उसकी अता और उसकी रहमत का इतना तसलसल है, ऐसा नहीं है कि अता फरमा दिया और बस होगी, एक तवातर है, एक मुतवातर तसलसल है रहमत बारी ताला का, तब यह हयात रवा और दवा। इसमें अलग बात है कि सिफ्त रहमानियत पर बात हो या सिफ्त रहीमियत पर बात हो, लेकिन तसलसल है और ये तसलसल एक लहजे का इनकता अगर इस तसलसल में आ जाए तो कोई शय बचे नहीं, रुके नहीं, किसी शय का वजूद ना रहे, हर चीज अदम हो जाए। तो उसकी करम और उसका एहसान कि उसने توفیق کی عمل دی، پھر وہ فرماتا ہے کہ اپنے فضل سے اسے لا عطا فرمائے گا. یعنی جو انعامات ہیں وہ تو اس قابل ہے یا نہیں، وہ اس سے قطع نظر اپنا کرم اور احسان فرما دے گا. تو اس کے حضور سرگرداں تو رہا، کوشاں تو رہا، تیری طلب تو رہی، جیسا بھی تو نے عمل اختیار کیا اللہ کریم اسے قبول فرمائے، تو اس پر اپنے فضل سے، اپنے کرم اور اپنے احسان سے صلہ عطا فرمائیں گے. اور عجیب نقطہ یہاں اگلا حصہ آیا کریمہ بیان فرماتی ہے، انہو لا یحب الکافرین، فرمایا بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. اب دیکھیں کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کریم نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور فرشتوں میں پہلے اعلان فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو زمین میں میری عبادت کرے، اور فرشتوں نے عرض کی کہ بار الہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مفہوم عالی ہے قرآن کریم کی آیات کا، مختلف جگہ پر یہ حصہ بیان ہے. تو یہ تو بار الہ فساد کریں گے، تو اللہ کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ کریم نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ مبارک سے لے کر اور آپ کی نبوت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اپنے پیاری ہستیوں سے نوازا، جنہیں ذریعہ بنایا ہم تک اپنی پسند و ناپسند پہنچانے کا. اب دیکھیں یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، انہی میں آپ اگر غور فرمائیں تو جو جیسا عمل کرے گا اس کا نتیجہ تو ویسا ہوگا، لیکن جو عمل صالح بھی کریں گے انہیں پھر رعایت کیا ہوگی کہ انہیں اپنے فضل سے صلہ دے گا، یعنی وہ اپنی شان سے انعام عطا فرمائے گا. اور ہماری عبادات تو کیا ہیں کہ کمزور عبادات اور اس پر زوم کہ اب میرا جو ادھار ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف چلا گیا ہے کہ میں نے اتنی عبادات کر لی ہیں. ہماری یہ سوچ عمومی معاشرے کی سوچ ہے، میں کسی فرد کو مخاطب نہیں کر رہا، لیکن عمومی سوچ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں. چونکہ بے شمار لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، بے شمار جو ہیں احباب بات کرتے ہیں، ای میل پر بات کرتے ہیں، ملاقات پر بات کرتے ہیں، تو بے شمار انداز اور پہلو معاشرے اور معاشرتی حیات کے سامنے آتے رہتے ہیں، تو اس میں سے میں یہ چیزیں اخذ کرتا رہتا ہوں. اب ایسے ہی ایک ای میل تھی مجھے، اس ای میل میں صاحب تحریر لکھتے ہیں کہ مصروفیت بہت ہے، اجتماع کے 40 دنوں میں میں نہیں آ سکوں گا، تو میرے حق میں آپ دعا کر. تب میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ عالیہ میں 40 دن کا سالانہ اجتماع ہے، اس کی ابتدا کو دیکھیں، حضرت بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی ابتدا کیسے کی، کن کن مراحل سے یہ اجتماع گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا. حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری حیات لگائی اور اسی بہر میں کہ احباب جو ہیں ان کو ترویجی سلسلہ کے حوالے سے سیکھا سکھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے. اب لکھنے والا لکھتا ہے کہ معمولات زندگی جو ہیں ان کی جو حالات یا مصروفیت ایسی ہے کہ میں تربیت کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا. اور میں دیکھتا ہوں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھتا ہوں کہ صبح سے شام تک اور پھر آپ کے وصال مبارک کے بعد اپنے معمولات کو بھی دیکھتا ہوں کہ ذاتی مرضی تو رہی کوئی نہیں، نہ کہیں پسند و نہ پسند سے آنا جانا رہا، نہ اپنے کو اہل و عیال کی ضروریات رہیں. بے شمار زندگی کا بہر ہے جو ہمارے ساتھ بھی تو منسلک، ہم بھی تو اسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. پسند و ناپسند بھی ایک انسان کا مزاج ہے، اس کی ضروریات بھی ایک اس کے مزاج کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ایک مخلوق وابستہ ہوتی ہے اہل خانہ کی صورت میں، ان کے ساتھ بھی تو ان کی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہر چیز کو ہم نے مؤخر رکھ کر اور مقدم اس کو رکھا کر آنے والے کو ہم سکھائیں کہ اللہ اللہ کیا، اور اس سے کوئی توقع بھی نہیں، اور وہ لکھتا ہے کہ میں فارغ نہیں. کیسے حالات اور کیا حساب ہے، اور یہ اس کی شان، اس کی کرم نوازی، اس نے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہر بے کراں اپنی مخلوق میں پھیلا دیا. उसका करम और उसका एहसान है। अगर ना हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो मामलात और मसाइल हैं इनसे फारिग नहीं हो सका। जो इनसे फारिग होता तो फिर अल्लाह अल्लाह सीखता। मियाँ मेरा और आपका एहसान नहीं है कि हम अल्लाह अल्लाह सीख रहे हैं, ये उसकी करम नवाजी है, वो जिसे तौफीक दे दे कि वो उसका नाम ले। तो मैंने जवाब में मुख्तसरन लिखा, मैंने लिखा कि ये जो मसाइल हैं ये ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन जब ये मसाइल ख़त्म होंगे तब फुर्सत नहीं होगी, और जब फुर्सत नहीं होगी फिर इस ये एहसास कि मैं अल्लाह जल्ला शानू की याद को चला जाता, फिर इस एहसास से हासिल कुछ नहीं। और नीचे एक लाइन में मैंने लिख दिया कि अल्लाह करीम मेरी आपके हम सब की जो मुश्किलात हैं वो आसान फरमाए। लेकिन तब से अब तक मैं ये चीज़ सोच रहा था कि जिंदगियां लग गई हैं लोगों की, इसी दुनिया में उनकी भी हयात बसर हुई है, यही अवरदात भी साथ। इंसान के अंदर ख्वाहिशात होती हैं, उन्हें रद्द करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर एक को बंदा कहे कि मैं मुजाहदे से बाहर। मैंने साले की हैसियत से भी यहां वक्त बसर किया है और शेख की हैसियत से भी आपसे गुजारशात पेश कर रहा। हर इबादत के लिए एक मुजाहिदा दरकार होता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। वजूद कुछ कह रहा होता है, जहन कुछ सोच रहा होता है, लेकिन उसे रद्द करना पड़ता है। ये इम्तिहान गाह है हर एक के लिए। अब वो जितनी हैसियत का है उतना उसका इम्तिहान, और उस इम्तिहान की नजाकत बढ़ती चली जाती है। तो जब बात हमारी तरफ आती है तो हम कमजोरियों की तरफ जाते हैं, और वो रब कायनात फरमाता है कि तुम्हें अपने फजल से नताइज नवाजूंगा। अल्लाह करीम ये तौफीक अमल अता फरमाए कि हम अल्लाह जल्ला शानू की जो पसंद है उसके मुताबिक अपने आप को ढालते जाएं और उस पर उसकी पाबंदी नसीब हो। तो अगला हिस्सा जो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि हम कैसे कि जिन्हें फुर्सत नहीं है इस्लाम पर अमल करने की, और उसकी शान के जो अमल किया वो फरमाते हैं अपने फजल से अता करूंगा, यानी नताएज उसकी शान के मुताबिक होंगे। तो जब नताएज उसकी शान के मुताबिक होंगे तो जिन्हें सहूलत नसीब होगी वो सोच नहीं सकते। वो रब करीम जो ज्यादती करता है उसकी ज्यादती का सिला वो अपनी ज्यादती के मुताबिक लेता है, लेकिन भलाई में और अजर और सवाब में वो अपनी शान पर अता फरमाता है। इसीलिए कुरान करीम में जब कोई कुफर करता है और उसके नताइज पर बात आती है तो वो फरमाया जाता है कि वो अपने ऊपर जुल्म खुद कर रहा है, यानी जो कुछ वो कर रहा है वो भुगतेगा, ये जुल्म उसने अपने ऊपर खुद रहा है। और फिर आखिर में जब ये फरमाया ना कि इन्नौला युहिब्बुल काफिरीन, बेशक वो काफरों को पसंद नहीं फरमाता। देखो हमारे कमजोर इबादात को वो अपने फजल से सिला दे रहा, हमें पैदा उसने फरमाया कि उसकी इबादत को बेशुमार मखलूक अनगिनत मखलूक है जो अल्लाह जल्ला शानू की इबादत पर मामूर है, जिसको जहां जब तक पैदा फरमा उसमें एक नुक्ते का अमल नहीं, एक नुक्ते की सोच जो है उसमें भी कमी बेशी उसके अंदर वो नहीं कर सकता। वो पाबंद रब्बे कायनात ने हमें अपनी इबादत को पैदा फरमाया, तखलीकी नमूना फरमाया, कलाम से नवाजा। ये वो हिस्सा है कि जिसे अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने अंबिया और रसूल को वसीला बनाया, कलाम जाती से नवाज देना ये बहुत बड़ी अता है अल्लाह जल्ला शानहू कि उसने हमें अपने कलाम जाती से नवाजा, और इतना नवाजा मुसलसल 23 साल नजूल वही होता रहा। और न सिर्फ वो नजूल वही होता रहा, उसे हिफाजत जाती अता फरमा दी, और हम जैसे गुनागारों को उसे तलावत की तौफीक अता फरमा। और फिर जब बंदा तजावुज की तरफ जाए कि मैं मानता नहीं हूं, वजूद उसका दिया हुआ, उस वजूद में जिस ताकत को बरूए कार लाते हुए जिस जबान से इनकार के अल्फाज बुलंद कर रहा है, उस आवाज के पीछे दी हुई ताकत उसकी, और जब वो इनकार करता है तो फिर वो फरमाता है बेशक वो काफरों को पसंद नहीं फरमाता। कितना फासला, कहां करम नवाजी कमजोरियों पर भी अता, और जब तजावज इख्तियार करते करते हदों से गुजर गए तो वो फरमाता है बेशक काफरों को वो पसंद नहीं फरमाता। अब जो उन हिस्सों में चला गया कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद ही नहीं फरमाया, उसका क्या हाल होगा? वो अब्दुलाबाद की जिंदगी जिसने खत्म नहीं होनी, उसकी उसमें उसकी हयात का क्या समा होगा? वो कहां गिड़गिड़ाएगा, उसे कहां फुर्सत मिलेगी? इन सारे बहर को देखते हैं तो फिर इस आया करीमा जिसकी मैं तलावत करता हुआ आ रहा हूं, इन आयात करीमा की, कि ये जो फसाद जमीन पर बरपा होते हैं, देखो ना खुश्कसाली होती है तो इतनी खुश्कसाली होती है कि वो तकलीफ बनना शुरू हो जाती है। बारिश रहमत है लेकिन जब हद से ज्यादा बरस जाती है तो वो जहमत का सबब बनना शुरू हो जाती है, फिर तकलीफ के हिस्से आना शुरू हो जाते हैं। हवा चलती नहीं, चलती है तो ऐसे चलती है कि हर चीज उखेड़ देती है। गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो इतनी बढ़ जाती है कि जो चीजें गर्मी में तैयार होनी होती हैं वो गलने सड़ना शुरू हो जाती है। पैसा होता है और मामूलात जिंदगी ऐसे हैं कि बंदा जरूरियात हासिल नहीं कर सकता। चीजें मौजूद हैं, आसाइश की चीजें मौजूद हैं, नया खाने दिल को खोल कर देखो तो वो चीख रहा है, वहां सुकून नहीं है। ये क्या है? ये सारे के सारे वो हिस्से हैं जो बंदा तजावज की तरफ जाता है तो फिर उसे ये तकालीफ बनती चली जाती हैं। बंदा अल्लाह जल्ला शानहु की जो रहमत है उससे बाहर निकल जाता है। जब उससे बाहर निकल जाता है तो यही हयात जिसके पीछे बंदा अल्लाह जल्ला शानहु का तल्लक छोड़ कर जाता है, तकलीफ का सबब बनती है, सुख का सबब नहीं बनता। और यही दुनिया, जब इस दुनिया को दुनिया की तलब में बसर किया जाता है तो ये दल दल की सूरत इख्तियार कर जाती है और हर उठने वाला कदम जो है या हर वजूद की हरकत इसे मजीद गहराई में धंसाती चली जाती है। और इसी हयात दुनिया को इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसर कर लो तो ये सीढ़ी बन जाती है कुर्ब इलाही के लिए। अब इसका इन्हिसार तो मुझ पर और आप पर है ना कि हम अपने लिए मुकदम रखते क्या। हमें वो मुकदम है जिसकी किर्ची हर आने वाले दिन और हर आने वाले लम्हे पे टूटती है कि हम चाहते कुछ है नतीजा कुछ आता। ये हमें वो मुकदम है जिसके नताएज अल्लाह के हबीब ने वो बयान फरमा दिए जो अल्लाह जल्ला शानहू के करम और फजल से अब्दुलाबाद हयात तक नसीब होते चले जाएंगे। अब उसने पाबंद तो फरमाया नहीं, हर एक को जिंदा रहने का हक उसने दे दिया, हर एक को मजहब इख्तियार करने का हक उसने दे दिया। और इसी नी आयात में ये दावत भी दी कि कुल सीरू फिल अर्द, जाओ ना देखो दुनिया में घूम कर देखो, नताई तो देखो कि क्या हुए हैं। जैसी लोगों ने जिंदगी बसर की है वैसे नताएज उसने पाया। तो ये कैसे हो सकता है कि जो सुन्नत दुनिया की चली आ रही है उसको मैं और आप तब्दील कर लें कि जैसे हमारे आमाल हों उनके बरक्स आमाल तो कमजोर हों बद हों और बरक्स हमारे नताएज आला और अरफा हो जाए, कैसे मुमकिन है? फिर इससे आगे जब बात आती है तो फिर फरमाया ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون। फरमाया और उसकी निशानियों में से है कि हवाओं को खुशखबरी देकर भेजता है। आप गौर कीजिएगा, बारिश से पहले हवा एक बारिश की और जहां बरसी है उस मिट्टी की खुशबू लेकर आती है और वो बड़ी भली महसूस होती है, उसके अंदर तरावट भी होती है, ताजगी भी होती है, एक महक भी होती है जो न सिर्फ इतला देती है, एक خوش کن جو کیفیت ہے وہ وجود پر پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے. اور تاکہ تم کو اپنی رحمت جو ہے وہ چکھائے, یعنی رحمت کا مزہ چکھائے. چونکہ جب بارش آتی ہے تو وہ بے شمار وہ حصے جو حیات کے تسلسل کا سبب ہیں اسے تقویت دیتی ہے, اور ایک تسلسل جو حیات کا ایک شروع ہو جاتا ہے. بظاہر تو گھاس پھوٹی, لیکن اس گھاس کو کیا اس چوپائے نے نہیں کھایا جس سے مجھے گوشت ملا؟ کیا اس جانور نے نہیں کھایا جس سے مجھے دودھ ملا؟ کیا اس جانور نے نہیں کھایا کہ جس کے وجود سے میں نے اپنے پہننا اوڑھنا بنا رہا ہوں؟ تو بے شمار پہلو ہیں جو ہمیں آ کر تقویت دیتے ہیں, اور ہماری حیات کے تسلسل کے اسباب میں اللہ کریم جل شانہ اسباب پیدا فرماتے چلے جاتے ہیں. تو اس کی رحمت جو ہے وہ بندہ محسوس کرتا ہے, چکھائے, تاکہ تم کو اپنی رحمت چکھائے, یعنی یہ تم محسوس کرتے ہو اسے ہر طرح سے, کھانے سے لے کر احساس تک اللہ جل شانہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے وہ ہوا جو باران رحمت کی خبر لے کر آ رہی ہوتی ہے. پھر فرمایا, اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں. یہ جو کشتی کی بات آتی ہے, قدیم زمانے میں جب کشتی شروع کی گئی تو اس کے چلنے میں بے شک چپو یا کوئی چیز تو ضرور لگائی گئی, لیکن ایک حد ہوتی ہے انسانی وجود میں بھی, طاقت تو ایک حد تک لگا سکتا ہے. تو ہوا کو بروئے کار لایا گیا کہ بادبان بنائے گئے کہ تاکہ ہوا جو ہے اس کی طاقت سے کشتی چل سکے. اور آپ غور کریں کہ آج اگر یہ کو کہے نا کہ وہ بادبان تو نہیں ہے, تو قرآن کریم تو ہوا کا بیان فرماتا ہے, تو میاں جس انجن کی اندر تپش پیدا ہو رہی ہے اور اس کشتی کے چلنے کا اور اس کے پروں کو چلانے کا سبب بن رہی ہے, اس آگ کو بھی اسی ہوا سے آکسیجن نصیب ہوتی ہے تو آگ بھی جل رہی ہے. تو جب اس چیز کو آپ معنی بعید پر لے جائیں تو یہ بہت بڑی وسعت جو ہے اس میں بات چلی جاتی ہے کہ کوئی شے جسے ہم اپنی ترتیب دے کر اپنے لیے فائدہ مند یا سود مند بنا رہے ہیں, اس کی اصل ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے, اس کی اصل قادر مطلق کی دی ہوئی ہے. ہم مرتب کرتے ہیں, ہم تخلیق نہیں کرتے, خالق وہ ہے. ہم اس چیز کو مختلف حصوں سے جوڑتے ہیں اور اسے ترتیب دے کر اپنے لیے فائدے کی صورت میں ڈھالتے ہیں اور لیتے ہیں. اب دونوں طرف دیکھ لو, اس چیز کا اصل بھی اسی کا, اور جو وجود یا جو ذہن اس ساری سوچ کو یا استعداد کو بروئے کار لا کر اس کلیے کو ایک شکل میں یا ایک ضرورت کے لیے طاقت میں ڈال رہا, یہ ساری استعداد بھی اس کی دی ہوئی ہے. تو یہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ اللہ جل شانہ نے جو حیات کا تسلسل باران رحمت سے نصیب ہوا اس کی اطلاع بھی پہنچتی ہے اور انسان محسوس بھی کرتا ہے, اور وہ ایک تسلسل کا سبب بھی ہے. پھر جب بات کشتیوں کی کہ اسی کے حکم سے چلتی ہیں, یعنی اسباب بھی مسبب الاسباب کے ہیں, اور اسباب کے تسلسل جو چلنے کا ہے یہ بھی اسی کے حکم سے ہے, از خود نہیں ہے. چلیں, فرمایا, لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اس کی روزی میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. اس کی روزی میں سے, یعنی اس نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے تلاش کرو. یہاں ایک اصول جو ہے وہ ضمناً اور بھی عرض کرتا جاؤں کہ بے شک اللہ کریم رازق ہیں, ہم مرزوق ہیں, اور اللہ جل شانہ نے ہر ایک کا رزق جو ہے وہ مقرر فرما دیا ہے. یہاں یہ اصول بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی تلاش کرو, وَلِتَبْتَغُوا, اور اس من فضلہ, اس کے لیے تلاش, اس کے لیے جو حرکت ہے, اس کے لیے جو سبب ہے وہ اختیار کرنا ہمارے ذمے ہے. और यहाँ ये समझ लेना कि मैं सबब करके अपने हिस्से से ज़ायद ले लूँगा, ये भी गलत है। और ये समझ लेना कि मैं सबब ही न करूँ, मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा, ये भी दुरुस्त नहीं। असबाब का इख्तियार करना कानून है इस दुनिया का, उसकी ज़ात मुसबब अल असबाब है। बेशक अगर कोई असबाब के पीछे बह गया और मुसबब अल असबाब को छोड़ दिया तो भी उसने नक्स कर दिया। और किसी ने यह कह दिया कि मुसबब अल असबाब ने मेरा हिस्सा मुकर्रर फरमा दिया, अब उसी की जिम्मेदारी है मेरे मुंह में भी पहुंच जाए, उसने उन असूल के खिलाफ चला गया जो उस मुसबब अल असबाब ने दुनिया में बनाए। दुनिया में अशिया के फायदे हासिल करने और खुराक से लेकर किसी चीज की जरूरत तक उससे जो फायदा या नुकसान है उसके लिए सबब जरूरी है कि वो इख्तियार किया जाए। और जब रिज की बारी आती है तो फरमाया कि ताकि तुम उसकी रोजी में से तलाश करो, यानी दिया हुआ जो कुछ है उसी का है, तकसीम भी उसी की है, दिया हुआ भी उसका है, तुम उसमें से तलाश करो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें नसीब होगा, तुम्हें मिल जाएगा। अब मैंने बात की कि एक पहलू तो ये है कि उसका दिया हुआ है उसके लिए सबब जरूरी है। अब कलामे जाती है, आप बात करते जाएं, इसके इतने निखार और इतने पहलू आते हैं कि वक्त साथ नहीं देता, जबान साथ नहीं देती, अल्फाज कम हो जाते हैं लेकिन मफाहीम जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। उसकी दी हुई रोजी में से तलाश करो, यानी है उसकी उसमें से तलाश करो, तुम अपना हिस्सा पा लोगे। और फरमाया वला अल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब शुक्र की सूरत के हम रोज अलहम्द पढ़ें, शक्ल की शुक्र की सूरत के हम अलहम्द की तस्बियां करें, शुक्र की सूरत के हम गुफ्तार में अलहम्द को ले लेंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन अपने मामूलात ये शहादत न दें कि हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, चूंकि शुक्राने के लिए यहां से इस इदारे तशक्कर को वापस उस आया करीमा के हिस्से पर ले जाएं जहां फरमाया ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर। इस यहां से तशक्कर को वहां तक ले जाएं तो पूरी बात को खोल कर देखें तो फरमाया जो कुछ तकालीफ दुनिया में बरपा हो रही हैं और जो तुम्हारे गिर्दो पेश के हालात हैं, इनमें जो तंगियां और तकालीफ आती हैं, इसमें तुम्हारा किरदार शामिल है। और जब तुम उस किरदार को देखोगे और उस किरदार को परखोगे कुरान और सुन्नत पर, तो फिर तुम्हें सही और गलत मालूम होगा। और जब सही और गलत मालूम हो जाए तो फिर दुनिया में जाकर अकवामे साबका को देखो कि जिस राह को उन्होंने इख्तियार किया उस राह के मुताबिक उनकी मनाजिल उन्हें मिली। अगर शिर्क किया तो दुनिया में तबाह भी हुए और दुनिया में तबाही की मिसाल भी बन गए कि आज तक जब कोई उन खंडरात को देखता है तो उसके वाकयात का तसलसल मिलता है कि इन्होंने तजावज किया था अल्लाह के हुक्म से और इन्हें ये सजा मिली। और इसकी शहादत कलाम ज़ाती देती। जब इस सोच को पहुंच चुको कि नतायज जो हैं वो मुरतब होंगे किरदार पर, फिर फरमाया फाकिम वजह का लिद्दीन अल-कय्यम, फिर दीन जो इस्लाम है, ये जो सिरात मुस्तकीम है, इस पर डट जाओ, कायम हो जाओ, पुख्ता और यकीन से लेकर अमल तक तुम्हारा एक एक हिस्सा दीन इस्लाम के तहत आ जाए। तो ये वो हिस्सा है जब तकसीम होगी ना आबादियों की रोजे माशर अपने अपने किरदार के मुताबिक। जिसने कुफर किया होगा फरमाया उसका कुफर उसी के सारे, और जिसने अमले साले इख्तियार किए उसके अमले साले का सिला वो फरमाता है मैं उसे अपने फजल से दूंगा। यानी इतने आमाल नहीं होंगे जितने नताइज वो रब करीम अता फरमा देगा। और फरमाया उन्हें वो नहीं पसंद करता जो तजावज करते हैं। अब ये वो तसलसल है जो मैंने तफसीर बयान की है, तर्जमे में अर्ज करता आ रहा हूं। फिर उसने हमें मजीद दावत दी, इस सारे के बाद फिर मजीद दावत दी कि उसकी निशानियों को तो देखो। اس حیات کے تسلسل اور اس حیات کے تسلسل میں جو تیرا رزق اس نے تقسیم کیا ہے اس کے سبب کو اٹھو تو تمہیں جگہ جگہ سے جو حصہ تیرا ہے وہ تیرے نصیب میں آتا چلا جائے گا، تو پھر اس کا شکر ادا کرو. یعنی اس شکرانے سے مراد ماذ الفاظ نہیں ہے، اس شکرانے سے مراد ماز تسبیحات کا پڑھنا یا اعلان کا کرنا نہیں ہے، اپنی سوچ سے اعمال کو دین اسلام میں ڈھال دینا اظہار تشکر. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں، آپ جب عمل کریں اس میں حد ادب سے تجاوز ہو، لیکن آپ کہیں کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑے بھائی سے کہیں کہ بھائی جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ بات کریں اس کے خلاف کریں، آپ عمل کریں اس کے حکم سے تجاوز ہو، وہ کیسے کہے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اگر میں اپنے گرد و پیش دیکھوں، اپنی اولاد کو دیکھوں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھوں، اپنے ملازمین کو دیکھوں، اپنے بیت ہوئے ہوئے مخلوق خدا کو دیکھوں، وہ کہیں ہمیں تو آپ سے جی بڑی محبت ہے، جو بات کہہ رہا ہوں وہ مانی نہ جا رہی ہو، جو دین سے کھا رہا ہوں وہ سمجھ نہ رہے ہوں، کیسے میں کہہ لوں کہ آپ کو میرا احترام؟ تو جب ہم اپنی زندگی میں اس پیمانے کو ناپ کے طور پر رکھتے ہیں کہ میری کو تو مرضی نہیں مان رہے تو میرا تم کیسا محبت کا اظہار کر، تو پھر اسی پیمانوں کو تو دیکھ کر یہ سوچیں تو ہم سے ہی کہ وہ کیسے اظہار تشکر ہوگا کہ جس حیات میں تجاوز ہو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیسے اظہار تشکر ہو سکتا ہے؟ وہ شکرانہ کیسے مانا جائے گا رب کائنات کے حضور جس میں اس کے حبیب کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی؟ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ الفاظ نہیں، ان الفاظ کے ساتھ شہادت کردار ہے، اور اس کردار کے لیے کوئی تشنگی نہیں ہے، ایک ایک چیز بیان کر دی گئی ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند لمحات کی زندگی ہے، بہتوں کی گزر گئی، ہماری بھی گزر جائے گی جو ہم سے بعد آئے. جب تک فرصت ہے یہ ایک تسلسل ہے، چل رہا ہے، لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ جتنی گزار چکے ہیں اس کا احساس نصیب ہو، کہ جہاں جہاں تجاوز اور کمزوریاں ہیں اس کی معافی نصیب ہو، جو لمحات بچتے ہیں اللہ جل شانہ کا وہ شکرانہ اور وہ اظہار تشکر اور وہ کیفیت نصیب ہو جو ہمیں معمولات سے اٹھا لے، جو ہمیں پسند و ناپسند سے بلند کر لے، جو ہمیں ضروریات دنیا یا اس حیات دنیا کے لالچ سے الگ کر لے اور خالص اللہ کی جو بندگی ہے وہ نصیب جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.